તારીખ 11/7/1997, ડાયરીના બોલ નંબર 677 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 86.
સંગ કોનો કરવો મુમુક્ષુ માટે અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. સંગ કોનો કરવો? કેમ કે યોગ્યતા એવી છે કે સંઘની અસર આવ્યા વગર રહે નહીં. સત્સંગ હોય તો સત્સંગ, કુસંગ હોય તો કુસંગ. સંગ કરવા માટે, સામાજીવની પરીક્ષા કરવામાં તે માટેની મધ્યસ્થતા, તે માટેની યોગ્યતા, તે માટેની શક્તિ, ક્ષમતા એ વગેરે હોવું જરૂરી છે, અપેક્ષિત છે. અને ક્યાંય પ્રશ્ન અઘરો લાગે કે જે અમારામાં એવું નથી, એનું શું કરવું? આ પ્રશ્ન થોડો અહીંયા કઠણ લાગે, પણ એનો એક સરળ ઉપાય, સુગમ ઉપાય છે. તેથી તેનો સુગમ ઉપાય એ છે કે જેના સંગથી આત્માર્થ પોષાય, જેના સંગથી પોતાના આત્મકલ્યાણના ભાવોને પોષણ મળે, હિન્દી મળે, જિસકે સંગ સે અપના આત્માર્થ મેને આત્મકલ્યાણ કે પરિણામ કો પોષણ મિલે, પુષ્ટિ મિલે, અથવા આત્મતા કે પ્રતિ પરિણામ કી ગતિ હોવે, અપને આત્મા આત્મા રૂપ હોવે, ઉસકો આત્મપણા કહેતે હૈ, આત્મતા, ઉસકે પ્રતિ હમારે પરિણામ ગતિ કરે, એસા પ્રકાર અપને મેં જાંચ કરકે દેખ લેના ચાહીએ, જાંચ કરકે દેખ લેના ચાહીએ, હમારે પરિણામ મેં એસા પ્રકાર હોતા હૈ યા નહીં હોતા હૈ, વો જાંચ લેના ચાહીએ. બાદ મેં ઉસકે અનુકૂળ સંગ, એસે પરિણામ કે અનુકૂળ સંગ, વો સત્સંગ, વો સત્સંગ સંમત કરના યોગ્ય હૈ, ઉસકો સત્સંગ કે રૂપ મેં માન્ય કરના, સંમત કરના મેને માન્ય કરના યોગ્ય હૈ. સત્સંગ કરને કી ભાવના હૈ, વો તો સત્સંગ કે કરને લાયક હૈ, જિસકો સત્સંગ કી ભાવના હુઈ વો તો સત્સંગ કે લાયક હુઆ. અબ કિસકા સંગ કરના તો ઉસમે કભી ભૂલ હો જાતી હૈ, ક્યોં કે સામને વાલે કા પરિણામ કા પતા નહીં ચલતા. બાત તો સબ ધર્મ કી કરેંગે, શાસ્ત્ર કી કરેંગે, ફિર ભી યોગ્યતા અયોગ્યતા કા પતા નહીં ચલતા હૈ, તો કૈસે કરેં કે હમારે પરિણામ મેં આત્મકલ્યાણ કે વિષય કી પુષ્ટિ મિલતી હૈ, પોષણ પોષણ મિલતા હૈ કે નહીં મિલતા હૈ, પર હમારે પરિણામ હમારે આત્મા કે પ્રતિ ગતિમાન હોવે, એસા કુછ હોતા હૈ કે નહીં હોતા હૈ, તો અપને આપને તલાશ કરના ચાહીએ. ઓર વો દેખ કરકે અગર એસા હોતા હૈ તો યે સત્સંગ હૈ, એસા માન્ય કરના ઓર એસા સત્સંગ કરના, પર એસા સત્સંગ સરળતા સે કરના, વૈરાગ્ય સે કરના, ઓર ભાવના સે કરના, તો અવશ્ય ઉસકા ફલ આયેગા. અચ્છા, તો યહાં નિમિત્ત કા જ્ઞાન અપના ઉપાદાન દ્વારા હુઆ, નિમિત્ત કા જ્ઞાન અપના ઉપાદાન કે દ્વારા હો ગયા. ઇસ પ્રકાર સે ઇસ સત્સંગ કા પ્રસંગ કી સમજ કરને યોગ્ય હૈ. સત્સંગ ક્યોંકિ સંગ કિસકા કરના, ये बहुत बड़ा महत्व का प्रश्न है तो सामान्य बात नहीं है, फिर इसमें कोई भूल खाता है तो किधर का किधर चला जाता है इसका पता नहीं लगता।
कोई मान लो नया मनुष्य नई नई एंट्री की वो सत्संग कर रहा है, सत्संग में जो भी बात आ रही है वो शास्त्र के अनुरूप आ रही है, शास्त्र के अनुरूप आ रही है
ठीक।
और वो सत्संग करने के बाद में घर पे भी जाकर के चेक करता है कि शास्त्र से बिल्कुल बराबर बात आ रही है, तो उसको कैसे सत्संग बोलेंगे?
शास्त्र से मिलान नहीं करना है
जी, नया मुमुक्षु है,
नया मुमुक्षु की बात करते हैं कि नया मुमुक्षु को तो शास्त्र का ज्यादा पता है ही नहीं, तो शास्त्र से क्या मिलान करेगा?
जो शास्त्र जानने वाले उससे पूछेगा ना,
उसको पूछे इसके बजाय यहाँ पद्धति वो दिखाई कि तुमको क्या असर हुई, तुम नया हो लेकिन आया तो आत्मकल्याण करने के लिए आया कि दूसरा हेतु से आया? क्या आत्मकल्याण के हेतु से आया? तो तुम्हारा जो हेतु है, तुम्हारी जो भावना है, उसको पुष्टि मिली कि नहीं मिली वो देखो ना। दूसरी पंचायत में क्यों जाना, शास्त्र पात्र की पंचायत में या दूसरे को पूछने की पंचायत में मत जाना, क्योंकि जिसको पूछेगा वही ठीक है, वो समझदार है या वो ही नहीं समझता है क्या मालूम पड़े, इसलिए वो पद्धति तो ठीक नहीं है। न शास्त्र से मिलान करना, न किसी से पूछना, अपने आत्मा को पूछना, फिर भूल नहीं होगी, ये सही पद्धति है। उपादान से ही ये जवाब मिल जाएगा तुम, यही सच्ची पद्धति है। अभी पदम सिंह जी का वही प्रश्न आया था कल की चिट्ठी में कि हम सत्पुरुष के वचनों को शास्त्र से मिलान करते हैं और मान्य करते हैं कि ये सत्पुरुष है, इसमें हमारी क्या भूल है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो हमने उत्तर लिखा है कि सत्पुरुष की पहचान करके उसको मान्य करना, क्या फिर इसके वचन शास्त्र से मिले नहीं मिले वो कोई जरूरी बात नहीं, क्योंकि वो इसके वचन खुद ही शास्त्र है
जी।
तो मिलान करके स्वीकार नहीं करना, स्वीकार करके मिलान करना है। अगर मेल खाता है तो तुमको प्रमोद आएगा, नहीं मेल खाएगा तो तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वही शास्त्र है।
मिलाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी,
जरूरत नहीं है, फिर भी कहीं शास्त्र पढ़ते पढ़ते लगे गो सत्पुरुष कहते हैं, वही आचार्य कहते हैं, तो प्रमोद आएगा तुमको। लेकिन तुम मिलान करने को जाओगे तो जो विद्वान शास्त्र अनुकूल बोलता है उसको ज्ञानी मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका वचन मेल खाता है शास्त्र से, तो ये उसमें भूल हो जाएगी। ये पद्धति रॉन्ग है, गलत पद्धति है, देखो वो तो कितना अभ्यासी है, मेरे से पुराना मुमुक्षु है, मैं जब नया नया सोनगढ़ में आया तो उसके पहले से बाहर है, तो उस वक्त छोटी उम्र के थे, 23-25 साल की उम्र के थे, वो लोग आपको आगरा ले जाना है, तो क्या है प्रवचन करना है, मैंने कहा मैं तो प्रवचन करना जानता ही नहीं, पर वास्तव में उन दिनों में मैं प्रवचन करता भी नहीं, जानता भी नहीं था प्रवचन करना है, नहीं मेरा काम नहीं है ये, प्रवचन करना मेरा काम नहीं है, तुम दूसरे को ढूंढ लो, मेरे को आगरा फकरा आने का नहीं है, तुमने मना कर दिया था।
कैसे मालूम पड़ा प्रवचन करने के लिए आपको ले जाए?
वो क्या, वो जो नेमीचंद जी पाटनी थे ना, उन्होंने उसको बोल दिया कि इसको ले जाओ, खुशी भाई को ले जाओ। पर क्या है कि गुरुदेव को प्रेम था हमारे पे, गुरुदेव बार बार संबोधन करते थे, कभी प्रशंसा भी करते थे, तो समय को नजर में तो आ गए थे, तो पाटनी जी ने बोला कि इनको ले जाओ आप, तो मेरे पास आया कि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा है आपको आना है, मेरे को प्रवचन आता ही नहीं है, मैं करता भी नहीं, मेरे को करना है भी नहीं, तुम दूसरे को ढूंढो, हाँ गुरुदेव तो आए थे, तो वो तो पुराने हैं मेरे से। मैं तो गुरुदेव यात्रा के बाद आए जब सोनगढ़, बाद में मेरा आना जाना चालू हुआ था। इसके पहले मैं कभी सोनगढ़ नहीं गया। तो कुछ दो तीन साल चार साल बाद के बाद वो घटना घटी थी।
हाँ जी,
परीक्षण के दिनों में वो आए थे, हमको प्रवचनकार चाहिए सोनगढ़ का। नवचंद जी बात मैंने मेरा हवाला दे दिया, मैंने ना बोल दिया। मैं गया भी नहीं था। भावनगर में स्वाध्याय नहीं, भावनगर में स्वाध्याय थी 2020 आसपास। હું 2013માં 14માં પ્રવેશ થયો, ત્યાર પછીના 2-3 વર્ષની વાત છે। લગભગ વાંધો ન આવે, કેમ કે બાર બાર ફિર ઉસકો પુષ્ટિ મિલતી હૈ, વો બાત ઉસકા ફીલિંગ મેં આતા રહેગા। जहाँ वो जाता है वहाँ उनको अगर आत्मभाव का पोषण नहीं मिलता है, अपनी रुचि का पोषण नहीं मिलता है। उसमें क्या है कि अपनी रुचि उधर इधर उधर की रह गई। वो तो कृपाल देव ने लिखा कि चार कारण, एक पूर्वाग्रह, पूर्वग्रह के कारण सत्संग सफल नहीं होता है, पूर्वग्रह छोड़ना पड़ेगा, और प्रमाद, और इंद्रिय विषय में रुचि ज्यादा हो गए, रस ज्यादा हो गए, और स्वच्छंद स्वच्छंद मनमानी करना। सत्संग में जो बात आती है उसको छोड़ करके मनमानी पद्धति से साधन करना, तो सत्संग सफल नहीं होगा। इसलिए सत्संग में सरलता की कंडीशन पहला है। सरलता वो है कि हमको हमारे में सुधार करना है, और हमारे सुधार की जो भी बात हमको मिले
जी,
उसका हमको शीघ्र अमलीकरण करना है, वो सरलता है। और भावना, आत्मकल्याण की तीव्र भावना, सरलता, और वैराग्य, मैंने उदय भावों में रस कम देना, तीव्र रस से उदय की प्रवृत्ति नहीं करना, क्योंकि नुकसान वही होता है। तो नुकसान के विषय में जागृति आ जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। उदय में हम वैसा के वैसे लगे रहे, और शास्त्र स्वाध्याय के टाइम में शास्त्र स्वाध्याय कर ले, सत्संग कर ले, सत्संग का विषय चौपट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सारी जिंदगी करते रहो, पर बहुत हमारे यहाँ यही होता है कि स्वाध्याय के काल में सत्संग के काल में सब बैठ जाते हैं, पर फिर जो हमारा व्यावहारिक जीवन है उसमें वैसे के वैसे हम प्रवृत्ति करने चल जाते हैं, वहां जागृति नहीं रखते, निरस्ता नहीं आती, तो फिर वो सत्संग का कोई असर रहेगा नहीं, कोई असर आएगा नहीं सत्संग का। सारी जिंदगी वैसे ही चली जाएगी कि एक और हम सुबह शाम स्वाध्याय करें, दूसरी ओर हमारे परिणाम हमारे उदय में वैसे के वैसे रस से लगे रहे। तो हम वो बात हम जो करना चाहिए वो बात हम करते नहीं। तो 491 पत्र में लिखे कृपाल देव ने कि 510 में लिखा है, 510 में वो लिखा है पत्र, तो ये त्रिभुवन भाई के पर है। हाँ, पुत्रादि संपत्ति में अपनत्व, मैंने संयोग में अपनत्व, ऐसा सत्संग की इच्छा वाले को नहीं होना चाहिए। जो सत्संग की इच्छा रखता है उनको घर में, कुटुंब में, संपत्ति में अपनत्व रखना वो बात सत्संग की इच्छा वाले को नहीं होनी चाहिए। या तो आप सत्संग को इच्छो, यानी सत्संग के वांछा के दरम्यान, वांछा के दौरान आप मोक्ष को इच्छो, या तो आप संसार को चाहो। दो चाह नहीं साथ में रहेगी, संसार की भी चाह और मोक्ष की भी चाह, दो चाह साथ में नहीं रहेगी, विरुद्ध है इसलिए। मित्र की चाहना होती है, दुश्मन की चाहना कभी नहीं होती है। नहीं, उसमें क्या है कि दुश्मन को पहचाना ही नहीं। जो हमारे हृदय के परिणाम है, संसार के प्रति परिणाम है, उसमें कितना नुकसान है, बहुत कॉमन हो गया रास्ते में बात हुआ ना, इतना सामान्य हो गया है कि इसमें क्या है। सब अपने अपने परिवार में अपनत्व करते हैं, हाँ वो ड्यूटी समझते हैं, फर्ज समझते हैं, धर्म समझते हैं, लेकिन वो कितना दुर्गति में ले जाने का बड़ा कारण है, इसकी गंभीरता नहीं आई। आज ही हमने वो 3 नंबर का प्रवचन चेक किया, उसमें वो बहुत जोर से बात किया है गुरुदेव ने कि यहाँ तो गुण भेद और पर्याय भेद का निषेध करते हैं आचार्य श्री, तो तुम कुटुंब परिवार बाइड़ी छोकरा है तो बोलता ना मैं, उसमें तो अपना अपनापन करता है, तो नरक निरोध में चला जाएगा, कुछ भान है कि नहीं है तुमको, ऐसा ठपका देते थे। अपना तो छोड़ना बहुत गाढ़ किया है, तो अपने को छोड़ना भाव में, त्याग करने को बोलेंगे तो दीक्षा ले लेगा, हाँ, लेकिन अंदर से अपने को छोड़ना वो बात बहुत कठिन हो जाएगी। तो बहुत गाढ़ कर दिया है ना, तो उसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए। नजर के सामने रख लेना जिसमें अपना तो होता है कि यहाँ मेरा अस्तित्व नहीं है, क्यों अपना तो होता है, ये धोखा मैं क्यों खाता हूँ, लोग मुझे बुद्धिमान समझता है लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष धोखा खाता हूँ रोजाना, कि जहाँ मेरा अस्तित्व नहीं है ऐसे दूसरे जीव में, दूसरे अजीव में, जीव और अजीव, चेत सचेत और अचेत दोनों में मैं मेरापन अपनापन करता हूँ, जबकि मेरा अस्तित्व वहां है ही नहीं, तो ये तो मैं अपने आप को ठीकता हूँ। ये धोखाबाजी बहुत दुखदायक है, इससे तो दुख उत्पन्न होता है और इससे ही सभी प्रकार के जितने भी अपराध है वो यही कारण से होता है। कतल खाना लगाने वालों ने क्यों लगाया, वो भी 4 रोटी खाता है, 6 रोटी खाता है, कि उनको भी कुटुंब परिवार की दरकार है, और जो कतल खाना नहीं लगाता उनको भी वही दरकार है। बात तो दोनों की एक सी हो गई अंदर में, बाहर में फेरफार है, बाहर में फेरफार है तो वो फेरफार हो जाएगा उनका, आज कतल खाना नहीं लगाता है तो कल लगाएगा, क्योंकि उनको तो अपने परिवार को ही पालन पोषण करना है। हम ये जो 670 कह रहे हैं वो संघ के विषय में आया, संघ किसका करना, तो बहुत गंभीरता से विचार करके संघ करना है। अगर हमारे आत्मकल्याण के भाव, जो आत्मभाव है, अगर उसकी पुष्टि नहीं मिलती है तो हमें किसी भी कीमत पर संघ नहीं करना है, वो ख्याल करने की बात है।
Yeah. આત્મા કલ્યાણની ભાવના ન પુષ્ટિ મળે તો કોઈ પણ કિંમત અસમ નથી કરતી.
तो वो सत्संग नहीं है, वो असत्संग है या कुसंग है, दो में से कुछ है जो हमको करने लायक नहीं है. अब थोड़ी चर्चा आधा घंटा कर लिया.